दीवा और आर्यांश के साथ पार्टी में आई हुई थी। आर्यांश कपूर अपने साथ लड़की को लेकर आया था। ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात थी और हर कोई दीवा के बारे में जानना चाहता था। पार्टी के बीच में वर्तिका दीवा को अपने साथ ले गई। दीवा ने उससे आर्यांश के एक्स के बारे में जानना चाहा, पर वर्तिका ने उसे ये कहकर टाल दिया था कि वो उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती। तो वहीं आर्यांश का फ्रेंड श्रेष्ठ भी आर्यांश की लव स्टोरी जानने को उत्सुक हो रहा था। बीच पार्टी में थोड़ी ड्रिंक करने की वजह से दीवा को अजीब लगा, तो वो वॉशरूम में आई थी कि तभी अचानक किसी ने उसे खींचकर दीवार पर लगा दिया था। उस शख्स ने दीवा का मुंह अपने हाथ से बंद कर रखा था। दीवा ने जैसे ही उसे देखा, हैरानी से उसकी आंखें बड़ी हो गई थीं। मिस गोयनका, प्लीज चिल्लाना मत, मैं बस बात करने के लिए आया था, उस शख्स ने अपनी सफाई में कहा। वो कोई और नहीं, व्यांश अग्रवाल था। दीवा ने पलके झपकाकर उसकी बात पर हामी भरी। उसके हाँ कहने पर ही व्यांश ने उसका मुंह छोड़ा था। उसकी इस हरकत पर दीवा उसकी तरफ घूर कर देख रही थी। तुम मुझे इस तरह यहाँ क्यों लेकर आए हो, दीवा ने गुस्से में पूछा। मिस गोयनका, आपको नहीं लगता कि उस दिन डेट पर जो भी हुआ था आपको उसकी क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए? आप बिना सफाई दिए बीच डेट से भाग गई थी, दिव्यांश ने उसे घूरते हुए जवाब दिया। इसमें सफाई क्या देनी है, मुझे उस डेट पर जबरदस्ती भेजा गया था तो मुझे नहीं पसंद आई, इसलिए मैं बीच में छोड़कर चली गई। इतनी सफाई काफी है मिस्टर अग्रवाल, या और कुछ सुनना है, दीवा ने सीधे सीधे सख्त लहजे में जवाब दिया। उसकी इस तरह रिजेक्ट करने पर भी व्यांश को गुस्सा नहीं आया। वो हल्का मुस्कुराकर बोला, ठीक है, मैंने तुम्हारी बात सुन ली, अब मेरी बात भी सुनो। उस डेट से पहले ही मैं तुम्हारी फोटो देख चुका था और मैं तुम्हें पहले ही पसंद कर चुका था। अब जब तुमसे मिल चुका हूँ तो पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। व्यांश अपनी तरफ से क्लियर था कि वो दीवा के मामले में अपने कदम पीछे नहीं लेने वाला था। उसकी इस तरह सीधे सीधे इकरार करने पर दीवा ने चिढ़ते हुए कहा, मैंने तुम्हें एक वेल मैनर्ड इंसान समझा था, जब मैं मना कर चुकी हूँ तो क्या जबरदस्ती है, तुम्हें मेरे डिसीजन की रिस्पेक्ट करना चाहिए, बेहतर होगा कि तुम मेरे पीछे ना आओ। व्यांश ने अपने हाथ बांधे और सख्त लहजे में कहा, अच्छा तो तुम्हारे मॉम डैड जानते हैं कि तुम किसके साथ रह रही हो? उसका लहजा धमकी भरा था। उसकी बात सुनकर दीवा थोड़ा चौंक गई थी, लेकिन उसने खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश की। दीवा ने अनजान बनते हुए कहा, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। अच्छा ठीक है, फिर मैं मिस्टर गोयनका से ही इस बारे में सब कुछ पूछ लूंगा, व्यांश ने कंधे उचकाकर कहा। ठीक है, फिर जाकर उनसे ही पूछो, यहाँ मुझे क्यों बता रहे हो, दीवा ने सख्ती से जवाब दिया। तुम्हें डर नहीं लग रहा, व्यांश ने हैरानी जताते हुए पूछा। नहीं, दीवा ने बिना डरे जवाब दिया और फिर सीधा वहां से बाहर जाने लगी। उसने एक बार पलटकर व्यांश की तरफ देखा तक नहीं था। अचानक दीवा के चेहरे पर कॉन्फिडेंस के भाव उभर आए थे। उसके पास आर्यांश का साथ था। दीवा नहीं जानती कि मामला इतना उलट जाएगा, वरना वो पहले ही आर्यांश को डेट पर अपने साथ लेकर जाती। वहीं दूसरी तरफ बाहर आते ही दीवा को पता चला कि आर्यांश ऊपर वेन्यू के टेरेस पर था। वो जल्दी से वहां पर गई। उसने देखा आर्यांश ने काफी ड्रिंक कर रखी थी। वो टेरेस पर एक बेंच के ऊपर लेटा हुआ था। दीवा जल्दी से उसके पास गई और उसे सहलाने लगी। आर्यांश को टेरेस पर श्रेष्ठ ही लेकर आया था। वो अभी वहीं उनके पास में बैठा हुआ था। ड्रिंक तो उसने भी कर रखी थी, लेकिन उसने आर्यांश के जितना नहीं पी थी। दीवा बार बार टिश्यू पेपर से आर्यांश का चेहरा साफ कर रही थी। श्रेष्ठ ने उसे इस तरह आर्यांश की परवाह करते देखा तो वो मुस्कुराकर बोला, आर्यांश की गर्लफ्रेंड, तुम्हें नहीं लगता कि तुम इसका कुछ ज्यादा ही ध्यान रख रही हो? क्या बात है, इतनी परवाह क्यों हो रही है? वो दीवा का नाम नहीं जानता था, इसलिए उसने उसे आर्यांश की गर्लफ्रेंड कहकर बुलाया। दीवा ने एक नज़र घूर कर उसकी तरफ देखा और फिर वापस से आर्यांश का ध्यान रखने लगी। दीवा ने श्रेष्ठ को इग्नोर किया तो वो उसके सामने आकर बैठ गया था। श्रेष्ठ ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए दीवा को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहा, मैं श्रेष्ठ मित्तल हूँ, आर्यांश का बेस्ट फ्रेंड, इसके बारे में सब कुछ जानता हूँ, क्या तुम इसके पहले प्यार के बारे में जानना चाहोगी? दीवा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। ड्रिंक तो उसने भी की थी, लेकिन नशा इस तरह उस पर हावी नहीं हो रहा था। दीवा चाहती तो आर्यांश के बारे में सब कुछ जान सकती थी, उसके पास अच्छा मौका था। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, दीवा ने सख्त लहजे में कहा। ठीक है, फिर संभालो इसे अकेले, श्रेष्ठ ने मुंह बनाकर कहा और फिर लड़खड़ाते कदमों से वहां से जाने लगा। दीवा आर्यांश के साथ पूरी तरह अकेली थी। श्रेष्ठ के जाते ही दीवा ने आर्यांश का हाथ पकड़ा और उसे उठाने की कोशिश करने लगी। आर्यांश, आर्यांश प्लीज उठो ना, तुम तो कभी ड्रिंक नहीं करते हो, फिर आज क्यों की? सब चले गए हैं, हमें भी घर जाना चाहिए, प्लीज खड़े हो जाओ, दीवा ने आर्यांश को झिझोड़ते हुए कहा। दीवा ने आर्यांश को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो होश में नहीं आ रहा था। अब तो दीवा को उसकी परवाह होने लगी थी। वर्तिका भी काम होने की वजह से पार्टी से जल्दी चली गई थी और ज्यादातर मेहमान भी वहां से निकल चुके थे। मजबूरन दीवा को सार्थक को कॉल करके बुलाना पड़ा। कुछ ही देर में सार्थक वहां पहुंच गया था। उसने आर्यांश की हालत देखी, वो नशे में बेसुध होकर सोया हुआ था। सार्थक ने दीवा से कोई सवाल नहीं पूछा और फिर से सहारा देकर नीचे ले जाने लगा। कुछ ही देर में वो आर्यांश के विला पर पहुंच चुके थे। वहां जाते ही सार्थक ने आर्यांश को उसके कमरे में पहुंचाया। उसने एक नज़र आर्यांश के चेहरे की तरफ देखा जो काफी परेशान नजर आ रहा था। इसलिए कई सालों से सार्थक आर्यांश के साथ था और उसने उसे नशे में इतना मदहोश होते हुए मुश्किल से ही देखा था। इतनी पीने की क्या जरूरत थी? सार्थक ने दीवा की तरफ देखकर नाराजगी जताते हुए कहा। मैं इसके पास नहीं थी वरना रोक लेती, दीवा ने शर्मिंदगी के साथ कहा। अच्छा हुआ जो श्रेष्ठ उसे ऊपर ले गया था, वरना यह भी कल की ब्रेकिंग न्यूज बन सकती थी। आर्यांश की हालत ठीक नहीं लग रही थी, ऐसे में दीवा उसे अकेले नहीं संभाल सकती थी। ये सोचकर सार्थक ने कहा, मुझे आज रात के लिए यहीं रुक जाना चाहिए, इन्हें संभालने के लिए किसी की जरूरत पड़ेगी। अरे नहीं, आप यहाँ से चले जाइए, आपको सुबह ऑफिस में जाना होता है, मैं आर्यांश का ध्यान रख लूंगी। मैं आपको कॉल नहीं करती, पर हम समझ सकते हैं कि मेरा उसे अकेले उठाना नामुमकिन था, दीवा ने जवाब दिया। सार्थक ने उसकी बात पर हामी भरी। वो वहाँ से जाने को हुआ तभी दीवा ने पीछे से हिचकिचाते हुए कहा, मिस्टर सार्थक, क्या आप मेरी एक और मदद कर सकते हैं? सार्थक ने दीवा की तरफ पलट कर देखा तो दीवा ने झिझकते कहा, आर्यांश को चेंज करवाना होगा, उसे नहलाना भी है, आप तो जानते हैं ना मैं अकेले नहीं कर सकती, तो क्या आप मेरे लिए कर दोगे? सार्थक के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट उभर आई थी। उसने तुरंत नामे सिर हिलाकर कहा, माफ कीजिएगा मिस गोयनका, सिर्फ यही है जो मैं नहीं कर सकता। एक्चुअली मिस्टर कपूर को पसंद नहीं है कि कोई उन्हें टच करे, बेहतर होगा कि आप ही उन्हें चेंज करवा दें। अगर आपसे इन्हें नहलाना नहीं हो पाएगा तो स्पंज बाथ दे दीजिएगा। इतना कहकर सार्थक वहां से चला गया था। उसके जाने के बाद दीवा को उसकी बात का मतलब समझ आया था। उसने हैरानी से सार्थक की तरफ देखा। अगर आर्यांश को किसी को छूना पसंद नहीं था तो वो दीवा के करीब आने पर बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट क्यों करता था? ये मिस्टर सार्थक भी ना कुछ भी बोल देते हैं, दीवा ने सिर हिलाकर कहा। वो जल्दी से आर्यांश के पास आई। दीवा ने जैसे तैसे करके उसका ब्लेजर और शर्ट तो निकाल दी थी, लेकिन जब उसकी पैंट निकालने की बारी आई तो दीवा ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली थी।
कम ऑन, इतना भी मुश्किल नहीं है, वैसे भी कौन सा मैंने उसे बिना कपड़ों के देखा नहीं है, दीवा ने अपने माथे पर आई पसीने की बूंद को साफ करते हुए कहा। दीवा खुद को तसल्ली देने की कितनी भी कोशिश करना करने, लेकिन आर्यांश को चेंज करवाकर उसे गीले कपड़े से साफ करना उसके लिए सच में काफी मुश्किल भरा रहा। वो मन ही मन शुक्र मना रही थी आर्यांश गहरी नींद में था, इतनी गहरी नींद में कि उसके छूने पर उसे एहसास तक नहीं हो रहा था। दीवा ने हिम्मत करके उसे पूरी तरह अनड्रेस किया। आर्यांश को कंफर्टेबल कपड़े पहनाने के बाद दीवा ने चेंज किया और फिर उसके पास आकर लेट गई थी। वो आर्यांश को सोते हुए देख रही थी। वो काफी शांत नजर आ रहा था, ना उसके चेहरे पर गुस्सा था और ना ही वो उसे डरा रहा था। उसका खूबसूरत चेहरा वो घंटों तक देख सकती थी। अचानक दीवा ने अपना मोबाइल निकाला और आर्यांश के इस शांत से चेहरे की कुछ फोटोज क्लिक कर ली थी। शायद फिर उसे ये मौका नहीं मिलने वाला था, वैसे भी हर रात थक कर वो पहले सो जाती थी। कुछ ही देर में दीवा को भी नींद आ गई थी। अगली सुबह उसकी आंख खुली तो हमेशा की तरह आर्यांश उसके पास नहीं था। दीवा ने इधर उधर देखा तो बाथरूम का दरवाजा खुला था, आर्यांश बाहर आया था। उसने ऊपर शर्ट नहीं पहन रखा था और उसकी सिक्स पैक एब्स वाली बॉडी काफी अच्छे से विजिबल थी। उसके गीले बाल माथे पर बिखरे हुए थे। दीवा ने तुरंत अपनी आंखें फिर से बंद कर ली थी। आर्यांश दीवा के पास आया और उसका हाथ पकड़कर उठाते हुए शरारती अंदाज में बोला, चलो उठो, अब मैं तुम्हें नहलाने वाला हूँ। दीवा ने जल्दी से अपनी आंखें खोली और ना में सिर हिलाकर कहा, नहीं नहीं। अच्छा, अब तुम्हें शर्म किस बात की आ रही है? कल मुझे चेंज तुमने ही करवाया था ना, आर्यांश ने भौंयें उठाकर कहा। नहीं, मिस्टर सार्थक ने ऐसा किया था, दीवा ने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया, जबकि कल रात को सार्थक ने उसे साफ कहा था कि आर्यांश को पसंद नहीं था कि कोई और उसे छुई। वो ऐसा कभी नहीं करेगा, उसे अपनी जान प्यारी है, आर्यांश ने जवाब दिया। और फिर वो दीवा के पास आकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, ये तुम इतना शर्मा क्यों रही हो? डोंट टेल मी कि तुम्हें मुझसे शर्मा रही हो, मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरी। आर्यांश अपनी तरफ से दीवा को अडोर कर रहा था। उसे किसी और का छूना भले ही पसंद ना हो, लेकिन दीवा का करीब आना उसे बहुत अच्छा लगता था। इससे पहले कि दीवा कुछ कह पाती, आर्यांश ने उसे गोद में उठाया और सीधा बाथरूम के अंदर लेकर चला गया था। बाथटब में पहले से ही पानी भरा हुआ था। आर्यांश ने दीवा को उसमें लिटा गया था, उसके कपड़े निकालकर फेंक दिए थे। कल रात तुमने मेरी हेल्प की, मैं किसी का एहसान नहीं रखता, बल्कि उसका चार गुना करके वापस लौटता हूँ, तो तुम्हारे एहसान के बदले अब रोज मैं तुम्हें नहलाऊंगा, आर्यांश ने शरारती लहजे में कहा। अरे नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, दीवा हिचकिचाते हुए बोली। ऐसे कैसे जरूरत नहीं है? पति पत्नी को एक दूसरे की सेवा करनी चाहिए, आर्यांश ने दीवा के करीब आकर कहा। तुम बेशर्म हो, दीवा ने मुंह बनाकर जवाब दिया और फिर झाग वाला पानी आर्यांश के ऊपर फेंक दिया था। उसके ऐसा करने पर आर्यांश के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट उभर आई थी। वो भौंयें उठाकर बोला, तो तुम्हें आग लगाने का शौक है? दीवा ने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया था। वो आर्यांश की बात का मतलब बखूबी समझ रही थी। उसकी एक छोटी सी नादानी उस पर भारी पड़ सकती थी। आर्यांश उसे देर तक बिस्तर पर बिजी रखता, फिर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे काम पर जाने को देर हो रही थी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। जैसा कि आप देख रहे हैं, अब इनका रिश्ता बेहतर हो रहा है, तो क्या आर्यांश इनके इस रिश्ते को कोई नाम देगा या कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही दोनों दूर हो जाएंगे? चलिए पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा।